नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
दोस्तों, मैं हूं किशन और आज मैं आपको केंद्र सरकार द्वारा संचालित वाटर सेड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यदि हमें इस बात में कामयाबी मिल सके कि हम इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन कायम कर सके तो हमारी कई सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तो कई सारी समस्याएं होने लगती है। बरसात का पानी बहुत कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है। अगर इसी पानी को जमा किया जाए तो सरकार तो बरसात के बाद होने वाली पानी की समस्याओं से निपटा जा सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार वाटर शेड डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू की है। आइए आपको सुनाते हैं आंध्र प्रदेश करनाल जिले की एक कहानी। यह क्षेत्र पानी की समस्या से जूझ रहा था, पर केंद्र सरकार की योजना वाटर शेड डेवलपमेंट कार्यक्रम की वजह से करनाल क्षेत्र आज हरा भरा हो गया है। इस कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर वैसे क्षेत्रों का चयन किया जाता है जहां पर जल की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए ग्रामवासियों को विभिन्न रूप से जागरूक किया जाता है। जागरूक अभियान के तहत सबसे पहले लोगों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है। लोगों के बीच नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। पेड़ कहाँ लगाने चाहिए, कहाँ नहीं लगाने चाहिए, चेक डैम कहाँ बनना है, जल प्रबंध कहाँ करना है, विभिन्न ग्रामीण सभाओं में विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं को बताना एवं नक्शे के माध्यम से समझाया जाता है। इस ग्राम स्तर पर वाटर शेड डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत जितने भी जल प्रबंध के कार्य किए गए उसमें होने वाले खर्च को सरकार ने वहन किया। इसके परिणाम स्वरूप इस बार बरसात हुई तो जहां तहां हरियाली नजर आने लगी। अधिकारी इस क्षेत्र की स्थिति से भली भांति परिचित थे। उन्हें पता था कि विकास को गति तभी दिया जा सकता है जब लोगों के बीच जीवन यापन के संसाधन उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम के तहत लोगों को आर्थिक रूप से, खासकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया और धीरे धीरे लोगों की मदद से इस क्षेत्र में डेयरी उद्योग शुरू किया गया। इस शुरुआत के बाद से क्षेत्र में विकास को गति मिलने लगी, जैसे स्कूलों में बच्चे की उपस्थिति, किसानों द्वारा जैविक खेती और ड्रिप खेती का इस्तेमाल किया जाना जिसके माध्यम से उनकी आमदनी में वृद्धि हुई और उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। दोस्तों, बदलाव सिर्फ अकेले के प्रयास से ही संभव नहीं है। अगर हम सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे तभी बदलाव निश्चित है।
दोस्तों, मैं मधु बताने जा रही हूँ, बच्चों को चीजों को तोड़ने की आजादी देनी चाहिए क्योंकि वैसे ही वे सीख पाएंगे। सभी बच्चे चीजों को बनाना और तोड़ना चाहते हैं एवं कई बच्चों को खिलौने तोड़ने में बहुत मजा आता है क्योंकि वे खिलौनों से काफी जुड़े होते हैं, इसीलिए अपनी भावना को उसी के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। हमें उनके दिलों में क्या है और क्यों है यह जानने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वे अपने अंदर के प्रश्नों के हल खुद ढूंढ सके, क्योंकि जब तक हम उन्हें सिखाते रहते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, वे तब तक प्रकृति के नियमों को खोज नहीं सकते हैं। कई स्कूलों में खिलौनों के माध्यम से पढ़ाने में मदद ली जाती है ताकि उनकी जानने की इच्छा शक्ति तथा क्षमता बढ़ सके। बच्चों के लिए ऐसा तरीका या माध्यम ढूंढना चाहिए जिसमें उन्हें ज्यादा रुचि हो या सीखने की इच्छा रखते हो। जब तक हम बच्चों में खुद के लिए आज़ादी नहीं डालेंगे तब तक वे कभी कुछ नहीं सीख सकते। हम सभी जानते हैं कि एक दिन हर किसी का मृत्यु होना है, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए हमें थोड़ा बेहतर दुनिया छोड़ना होगा। इसकी भी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए क्योंकि इससे ही उनका विकास संभव है। वहीं एक अच्छी बात यह है कि विभिन्न विषयों को इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे सीखने में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। इसलिए हमें बच्चों को वो हर आज़ादी देनी चाहिए जिनका उन्हें अधिकार है, तभी उनका विकास संभव है।
मैं दीपक आज आपको जानकारी दूंगा 2018 में प्रवासी श्रमिकों की धमकी के बारे में। जैसे ही 2018 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक वैसे ही भारत देश आधिकारिक तौर पर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते जा रहा है। यह प्रवासी श्रमिकों के जीवन में प्रतिबंधित करने के लिए एक उपयुक्त समय है। प्रवासी श्रमिक पहले से अधिक खतरे, सूद और औपचारिकता का सामना करते आ रहे हैं। वर्ष 2017 में भारत को महत्वपूर्ण बदलाव का देश माना गया। एक ओर जहां आधार को सभी भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य किया गया, जो कि कई तरह के लाभ से जुड़े हैं। वहीं दूसरी ओर डिजिटल मनी ड्राइवर ने अशिक्षित या कम साक्षर श्रमिकों पर बोझ बढ़ा दिया है, जो हार्ड अर्जित पर हार गए वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास बैंक खाता नहीं था या वे चेक नहीं पढ़ सकते थे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद, मुंबई आदि कई जगहों में कई प्रवासियों की मृत्यु हो गई। इसी तरह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रवासियों के जीवन सस्ता होते देखा जाने लगा। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी श्रमिक अहमदाबाद, मुंबई और सूरत में अभी तक काम कर रहे हैं। वे मजदूरी की कमाई की उम्मीद छोड़ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें गाँव में अपने घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य राशन जैसे सार्वजनिक अधिकारों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम करने के अधिकार देख रहे हैं, क्योंकि वे इसके हकदार हैं। पर इन योजनाओं को ऑनलाइन डाटा प्रबंधन ने मुख्य लाभ प्राप्त करने में नई बाधा पैदा कर दी है, जिसके कारण वे सशक्त होने के बजाय वंचित होते जा रहे हैं। इसलिए 2018 में प्रवासी मजदूर सुरक्षित माइग्रेशन व अपने परिवारों के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। प्रवासियों को ऋण और रहने के लिए घर और संकट के समय उन्हें उचित संरक्षण दिया जाए। साथ ही वे ये भी मांग कर रहे हैं कि प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर कार्यस्थल प्रदान किया जाए एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर परिवारों की जरूरतों, महिलाओं और लड़कियों के प्रवासियों के लिए सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर, और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।